अब अगला हिस्सा है हमारा 144 से 148। टॉपिक लिखिएगा दुनिया या आखरत, यानी हीरों के बदले कांच के सौदागर तो नहीं है। और इसमें ख़ास तौर पे फिर नबी सल्लम की शहादत की जो खबर फैली थी उसको बुनियाद बनाकर कुछ बातें सिखाई गईं। आइए देखते हैं। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल। ज़रा से इस आयत पे गौर कीजिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ रसूल ही हैं और उनसे पहले बहुत से रसूल हो चुके। क्या अगर इनका इंतकाल हो जाए या शहीद हो जाएं तो इस्लाम से अपनी एड़ियों के बल फिर जाओगे? जवाब दीजिए। ये आयत उतरी तो ओहद के मैदान में थी लेकिन सहाबा इसको भूल गए और इस आयत के नज़ूल के तकरीबन 7-7.5 साल बाद जब नबी सल्लम का हकीकी विसाल हुआ और उमर फारूक होश गुम कर गए, तलवार निकाल के खड़े हो गए। अगर किसी ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए तो उमर की तलवार उसकी गर्दन काट देगी। उस वक्त फिर अबू बकर ने यही आयत मिंबर पे आके पढ़ी। फिर सहाबे कराम उस खौफ के सख्ते के आलम से निकले और फूट फूट कर रोए। उनको लगा कि यह आयत आज उतरी, तब कह लीजिए कि ओहद के मैदान में अल्लाह ने एक रिहर्सल करवा दी थी सहाबा को कि नबी की ज़िंदगी हमेशा की नहीं है। लीडर से रहनुमाई ले लो, फ़ायदा उठा लो, लेकिन याद रखो उनके जाने के बाद क्या करना है। हर लम्हे तैयार रहो, कल क्या हो सकता है। और मैं हमेशा साथियों को कहती हूँ, अक्सर सोचती हूँ, ज़िंदगी मौत किसी के हाथ में नहीं है। आपको मुझे नहीं पता हम ये दौरे कुरान पूरा कर सकेंगे नहीं, लेकिन मैं आपको यहाँ आज मेंबर पे कह दूँ कि अगर खुदा न खास्ता मुझे कुछ हो भी गया, लेकिन ये सब ऐसे ही होगा, आप ऐसे ही आएंगे, एक छुट्टी भी नहीं होगी। आधे पारे में तैयारी करके बैठे होते हैं कि कोई हेकअप आ गया तो आपके लिए अल्लाह के हुक्म से रिकॉर्डिंग की हुई है। किसको पता है, दूसरों को सहारा जानकर काम करेंगे तो कब तक। वो कहते हैं ना कि घर में लड़खड़ाया तो किधर जाओगे। तो हर अंसारुल्लाह को अपने कदमों पे खड़ा होना है और अपनी कॉज के साथ सच्चे होने वाले ऐसे वक्त में और ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं बजाय इसके के गिरे। और अल्लाह के नबी की जो खबर थी ये, इस पे सहाबा के ईमान के दर्जे खुल के सामने आ गए, कुछ तो और खड़े हो गए कि अब अल्लाह के नबी नहीं है, अब तो हमें और भी काम करना है। और कुछ जिनके दिल में कुछ औरों की मोहब्बतें भी थीं, कहने लगे चलो दीन का ही काम है, अबू सुफियान के साथ मिल जाते हैं, वो भी तो अच्छा ही है। और कुछ ने कहा पलट चलो, कोई अब्दुल्ला बिन उबई की तरफ रुख करता है। ये असल में टेस्ट होते हैं, अल्लाह ताला छोटे छोटे मरहले हमारे सब के ऊपर लाता है ताकि हम अपनी असल देख लें। नाम किन का बचा, ठुकने वालों का, वो ईंटें जो इधर से उधर बिखर जाती हैं। कभी आपने यहाँ पाकिस्तान में तो बहुत दफ़ा देखा होगा, जब घर बनता है ना तो ईंटें लगती हैं, और ईंटें लगती हैं तो वो एक बहुत खूबसूरत सा घर बन जाता है। कभी आपने देखा होगा कि कुछ ईंटें बच जाती हैं, अक्सर ही चीज़ें थोड़ी थोड़ी तो बचती हैं ना, उन ईंटों का नसीब क्या होता है। कभी आप देखें तो दो ईंटें जोड़कर तो वो बेचारी किसी मजदूर की बीवी चाय बना रही होती है, कोई चार ईंटें जोड़ के कोई फट्टा रख के उसकी बीड़ी बना लेता है, ऐसे ही है ना। बस एक जुमला नोट कर लें, दुआ करें जिस जगह जिसने अल्लाह ने आपको खैर दी है ना, आप उस बिल्डिंग में खप जाए। अगर इधर उधर गिर गए ना किसी भी जज्बे के तहत, खैर के या शर के या दूसरे के जज्बे के, तो आप याद रखिएगा कि आपका नसीब फिर ये चाय का चूल्हा बनना या कोई रोड़े पत्थर है। लग जाए घर में जो चीज़ बचती है उसको खपा दिया करें। खाना पकाते हैं ना, थोड़ी सी सब्ज़ी बच गई, आधी काली हरी मिर्च काटी, पूरी काट के ख़त्म कर दें, वो आधी चीज़ कोई नहीं खाता, टूटी हुई चीज़ें कोई नहीं लोग लेते हैं। आपकी मेरी असल कीमत क्या है कि अल्लाह मुझे आपको कहीं ठुका दे और ठुक जाए, और ठुकते नहीं तो रुलते फिरेंगे इधर से उधर, उधर से फिरेंगे, आपकी कोई सेह नहीं होगी, आपका कोई मुकाम नहीं होगा। आज मुस्लिम अखुवा के रस्ते की एक ये भी रुकावट है, समझ नहीं आती लोगों को, इसलिए मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। कहते हैं क्या करें, दीन का काम ही तो करना है ना, खुद कर लेते हैं, कीजिए। लेकिन याद रखिए दीन का काम इज्तमाई काम है। जैसे ये मेरा जिस्म है, अब आप देखिए आंखें, ये देखे मैंने हाथ रखा तो बंद, दूसरी भी बंद, जिस्म मौजूद है दिख नहीं रहा। कानों के आगे उंगली रखूंगी तो उंगली, कानों की में आवाज़ें नहीं आएंगी। इस जिस्म पे मुख्तलिफ चीज़ें ठुकी हुई है ना, आंखों का अपना काम, कान का अपना काम, हाथों का अपना काम है, گویا کہ مجھے اپنے اس وجود کے لیے ان مختلف چیزوں کی ضرورت ہے. اسی طرح دین کا کام کرنے والے کو بھی ہر ایک کی ضرورت ہوتی ہے. اس کو ریسیپشن پہ بیٹھنے والے کی بھی ضرورت ہے, اس کو ٹیکنیکل کی بھی ضرورت ہے, اس کو صفائی والے کی بھی ضرورت ہے, بیبی سیٹر کی بھی ضرورت ہے, اور کچن والے کی. اب پانچ میں نے گن دیے. اب پانچ لوگ جب ایک جگہ موجود ایک خدمت دے رہے ہیں تو کتنا آسان ہے وہاں جا کر دین کا کام کرنا. آپ اپنے کسی نیگیٹو جذبے کے تحت چھوٹی سی بات پر یاد رکھیے, مسلم اخوہ یعنی اخوت کے رشتے کو توڑنے والی چیز انا بھی ہے. میری نہیں کسی سے بنتی, میری ویو لنگ نہیں بنتی, اس کے ساتھ میں نہیں کام کر سکتی, اس کے ساتھ میری کیمسٹری نہیں ملتی, اس کے ساتھ مجھے اس کی بری لگ گئی, اور میں کسی کے ساتھ جڑ کے نہیں کرنا چاہتی. جو یہ جملہ بولتا ہے نا, لکھ لیں, بڑا جیم جملہ ہے آج کا. جو یہ کہتا ہے نا کہ میں کسی کے ساتھ جڑ کے نہیں کر سکتی, وہ اخوت کے رشتے کو توڑتا ہے. آپ کو کسی سے جڑنا ہی پڑے گا, ادھر نہیں جڑیں گے تو کہیں اور جڑیں گے. آپ کہتے ہیں نہیں اپنے اون پہ, تو پھر ایک وقت آئے گا آپ انہیں میں سے کچھ لوگوں کو لے کر ایک نیا گروپ بنائیں گے. یہ آپ کی مجبوری ہے, اور نہیں کریں گے تو کام وہ درجے کا نہیں ہوگا. یہ چیز میں نے پوری دنیا میں اللہ کے حکم سے جہاں جہاں اللہ مجھے لے گئے میں نے گھوم پھر کے دیکھی. برکت وہاں جہاں لوگوں کے دل جڑے ہوئے ہیں, خیر کی باتیں میں جہاں سب اپنی ہستی کو پیس کے تو ایک ملمہ سا بنا دیتے ہیں. اللہ نے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو بنیاد بنا کر کہہ دیا کہ اگر اللہ کے نبی کی وفات کی خبر سن کر یا ان کے نہ ہونے کی خبر سن کر تم میں سے کوئی اپنے دین سے نکلتا ہے نا, تو پھر آج ہی نکل جائے, شوق سے جائے. اور مزے کی بات دیکھیے, عبداللہ بن ابی 300 لوگوں کو لے کر نکل گیا نا, کبھی آج تک آپ نے ان کے نام بھی سنے؟ کوئی ان کا مقام بن گیا تھا, بچ گئے تھے, گھر بیٹھ کے انہوں نے کوئی محل بنا لیے. نام آج بھی آپ کو جنگ بدر میں ملیں گے تو سعد کا ملے گا, اور معاذ کا ملے گا, اور مصعب بن عمیر کا ملے گا. کھپ کے شکست بھی لے آئیں, اجتماعیت میں اخوت کے اندر اگر آپ مل کر نہ بھی کچھ کر سکیں تو بھی آپ کی عزت ہے ان کی نسبت, جو نکل کر الگ ہو جاتے ہیں. وہ تو تماشائی ہوتے ہیں, آج ہم تماشائی بنے ہوئے ہیں اسلام کے نام پہ. ڈیڑھ ڈیڑھ انچ کی مسجدیں ہماری, روڑے اٹکائے ہوئے ہم نے لوگوں کی ہدایت کے رستے میں, کام ہم دین کا کر رہے ہیں, پتہ نہیں اللہ کے ہمارا مقام کیا. آج کیوں اتنی مسجدیں الگ مختلف ہیں؟ ہر گلی میں چار مسجدیں کیوں ہیں؟ کیا ایک مسجد پوری نہیں ہوتی؟ نہیں, وہ اس فرقے کی, وہ اس جماعت کی. یاد رکھیے, آج کے دور کا یہ سبق اگر صرف پاکستان میں ہم سمجھ جائیں, ایک سال میں مسجدوں کو جوڑیے, اداروں کو جوڑیے, ریسورسز بچائیے. جس کا دل کرتا ہے پیسے جمع شروع کرو جی مسجد بنانی, اور ہم جیسے تھوڑے پیسے ڈال, چلو ثواب ہی ہو. کوئی ثواب نہیں ہوگا ایسی مسجد جہاں پہلے ہی موجود ہے, آپ دو کمرے کے بعد پھر ڈال رہے. کتنے غریب ہیں جن کے گھر بھی نہیں ہیں, کتنے بچے ہیں جن کا اسکول نہیں ہے. آپ ان کو چھوڑ کر ایک مسجد کے صرف چار قدم پہ ایک اور مسجد بنانے کا چندہ دے رہے ہیں. اچھا, ہمیں خود نہیں پتہ ہم کہاں دیں. میں اکثر سوچتی ہوں ہم اپنی زکوٰۃ بھی صحیح نہیں دیتے, واللہ مائنڈ نہ کیجیے گا. ماسیوں کو بیلیں کر کر کے جوڑے لے دیتے ہیں زکوٰۃ میں سے, وہ خوش ہوتی ہیں, باجی بڑی فیاض ہے, پتہ چلا باجی اپنی زکوٰۃ دے رہی ہے. نہیں لگے گی, یہ اجتماعی کاموں پہ لگتی ہیں چیزیں. اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمارا مزاج اجتماعیت کا ہو جائے, ورنہ اللہ معاف کرے کہ ہمارے ساتھ جو معاملے اس وقت بھی, یقین کریں میں اپنی انگلیوں پہ گن کے کئی نام آپ کو بتا سکتی ہوں کہ یہ صرف تقریباً 2.5 گھنٹے کا سیشن کرنے کے لیے کتنے لوگ ایسے کھڑے ہیں جیسے فوجی کھڑے ہوتے ہیں. یہ ہو جائے تو یہ نہ ہو جائے, یہ نہ ہو جائے, ادھر نہ ہو, آواز ہو گئی, بچوں کو دیکھیں, یہ کریں, کوئی آن لائن کو آن سیٹ, کیا ان کو کوئی اجر دے سکتا؟ آپ کو تو نہیں پتا کہ آپ کو یہ دورہ قرآن کروانے میں ان کا کتنا حصہ ہے, جو اپنی قربانیاں دے کر بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, کہ ان کا حصہ نہیں ہے. تو کیا آپ نے, میں نے صرف اپنا نام لینا, ناموں سے کیا ہوگا؟ ساری دنیا آپ کا نام جانے, ڈیول کا نام کون نہیں جانتا, ابلیس کا نام کون نہیں جانتا, فرعون کا نام کون نہیں جانتا. آج بھی ہیں ایسے نام کہ لوگ نام لے کر تھوک دیں, تو ناموں کو کیا کرنا ہے؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسل. آگے دیکھیے خوبیاں دی جا رہی ہیں. یہ رکوع دل پہ لکھ لیجیے, اگر آپ نے انصار اللہ بننا ہے. ہر وہ بندہ انصار اللہ بن سکتا ہے جس میں اب اگلی خوبیاں آنے والی ہیں. فرمایا, وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ, بغیر اللہ کے حکم کے کوئی جاندار نہیں مر سکتا. مقرر شدہ وقت لکھا ہوا ہے, دنیا کی چاہت والوں کو ہم دنیا دے دیتے ہیں. چھٹی کرو, سوری, آپ کیا دیں گے ڈکلریشن فارم؟ اللہ دے دے گا. دیکھیے بڑی سخت باتیں ہیں اس رکو میں. موت آنی ہے اللہ کے حکم سے. دل میں دنیا کی محبت تھی, اللہ کہتا لو پکڑو. جیسے بابا آتا ہے نا, آٹا دے دے روٹی دے دے, آپ دروازہ کھول کے اس کو روٹیاں پکڑاتے ہیں, جا بابا معاف کر. یاد رکھیے یہ ہے دنیا یا آخرت. دنیا کے طلبگار کو اللہ دنیا دیتا اور آخرت کا ثواب چاہنے والوں کو ہم وہ بھی دیں گے, اور احسان ماننے والوں کو ہم بہت جلد نیک بدلہ بھی دیں گے. دنیا مانگنے والے کو دنیا ختم, آخرت مانگنے والوں کو وہ بھی دیں گے, یعنی آخرت جو اس نے مانگی, اور ساتھ ہی ساتھ جلدی والا بدلہ دنیا پھر بھی دے دیں گے. کتنوں کو بات واضح ہو گئی؟ جب دنیا مانگتے ہیں نا تو صرف دنیا ملتی ہے, اور آخرت مانگتے ہیں نا تو دنیا راستے میں بغیر کسی محنت کے آتی ہے. بس آپ دیکھیے کہ آپ میں سے کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس دروازے سے باہر نکال دیں جو فرنٹ پہ ہے. کچھ کہتے ہیں نہیں وہ باہر پارکنگ لاٹ سے باہر جو مین ڈور ہے اس سے بھی باہر نکالیں. آپ میں سے جن کی خواہش تھی اس ڈور سے نکالیں, ہم کہیں گے جائیے, اب یہاں سے نکلیں. آپ باہر پارکنگ میں پھنس جائیں گے, آگے ڈور لاک ہے, یہاں اے سی لگے ہوئے, کرسیاں, صوفے, میز, اتنی مزے کی چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں, اور آپ مزے میں تھے, باہر جائیں گے آپ کو گرمی لگے گی, پھر آپ کہیں گے اوہو میں نے غلطی کی, مجھے یہ کہنا تھا کہ مجھے ادھر سے نہیں, مجھے وہ باہر کے مین ڈور سے باہر نکالیے تاکہ میں جاؤں. اور ایک دوسری سسٹر ہے وہ کہتی ہیں مجھے پارکنگ لاٹ کے باہر جو ڈور ہے نا ذرا اس سے باہر کر دیں. ان کی تمنا کیا؟ باہر کا ڈور. تو کیا یہ بیچ کا ڈور ویسے خود بخود نہیں آ جائے گا؟ بس یہ خوبصورت ڈور جو آپ نے بھی سجایا ہوا ہے نا, اس کو دنیا کہہ دیں. یہ دنیا ہے, دنیا 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 دنیا. ادھر سے نکلیں گے نا برزخ کی گرمیوں میں پڑے ہوں گے, قبر کے اندھیروں میں پڑے ہوں گے, اور وہ جو اگلا بہت ہی معمولی سا گیٹ آپ کو باہر دکھتا ہے نا, یہ آخرت کا ڈور ہے. دعا کیجیے اللہ یہاں سے اس دنیا سے سرخ رو کر کے عزت کے ساتھ واپس لے جائے. جب اس دنیا سے جائیں ایک پینی پیسہ نہ ہو ہمارے پاس, یہ تو میری اپنے لیے دعا ہے, اللہ ایک پینی نہ ہو میرے پاس کے جس کا میں کل تجھے حساب دوں. سب لے لے میرے سے, میں خود ہی دے دوں, تو نے کیوں دینا ہے, میں خود دے دوں. لیکن جب میں وہاں جاؤں تو میرے پاس وہ سب کچھ ہو جو میں نے یہاں سے دیا. ترجیحات بدلیے. ایک دورے قرآن اور کر کے آپ نے کیا تیر مار لینا؟ کتنے سنے لوگ فخر سے کہتے ہیں ہم نے 6 سال سنا, 8 سال سنا, 10 سال سنا, اور مجھے تو خود سے شرم آتی ہے کہ میں نے آپ کے سامنے یہ 19واں دورہ قرآن ہے جو مجھے یاد ہے, اس سے پیچھے کوئی تھا تو مجھے یاد نہیں ہے. تو میرے اندر نہ گیا, میرے عمل میں نہ گیا, میری ذات سے خیر نہ پھیلی, میری ترجیحات نہ بدلی, مجھے قربانیاں کرنا, ہجرتیں کرنا, اپنے جذبات پہ قابو پانا نہ آئے, اپنے رشتے ناتوں کو پیچھے ڈال کے دین کے رشتے جوڑنے نہ آئے, تو پھر میں نے کیا کیا؟ میں نے صرف بس ایک آپ کو انفارمیشنس دے دی. میں یہاں کیوں ہوں آج؟ کون ہے میرا اس شہر میں؟ میں کسی سے دور کیوں ہوں؟ میں کسی کے ساتھ کیوں نہیں جاتی؟ کسی کو میں کیوں نہیں بلاتی؟ یہ چھوٹی چھوٹی قربانیاں اللہ کل آپ کی لے کے آئے گا آگے. بڑی بڑی تو عبادت ہمارے پاس نہیں ہے. اللہ کے بن کے اٹھیں یہاں سے, یہ ایک 2-2.5 گھنٹے کا پارا نہیں ہے, یہ اب آپ کی آج سے لے کر موت تک کی زندگی کا لاحق عمل ہے. یہاں بیٹھ کے فیصلے کیجئے, یہ فیصلے کرنے کی جگہ ہے, یہ دل سے پوچھنے کی جگہ ہے. ہمیں 15 منٹ دور جانا آنا پڑ جائے ہماری جان پہ پڑتی ہے, سوری ٹو سے دیٹ, ایسے لوگوں سے کچھ نہیں ملنا اللہ کو, یہ اللہ والے نہیں ہوتے. آگے دیکھیں گے انشاءاللہ صحابہ کہاں سے کہاں چلے, کہ برک الغمات تک بھی جائیں گے تو جائیں گے. بس دعا کیجئے دل بدل جائے. آج ہم مسلمانوں کو امت کا درد نہیں, خبریں سنتے ہیں, ہائے ادھر اتنے مر گئے, ہائے بوسنیا میں یہ ہو گیا, کشمیر میں اتنے چلے گئے, او ہو انا للہ, دیکھو دیکھو بیگم کتنے, وہ دیکھو آج وہاں گولیاں چلیں. اچھا کچھ میٹھے میں نہیں ہے؟ کون سا کھانا ہے ہمارا جو میٹھے کے بغیر ہے؟ آج جا کر صرف میں بھی اور آپ بھی اپنی فریج چیک کریں کتنی قسم کے میٹھے ہیں ہمارے گھر میں. ہمارا تو ٹیسٹ ہی نہیں پورا ہوتا. ہمیں امت کا درد کدھر ہے؟ وہ گولیاں چلتی ہیں تو ان پہ چلتی ہیں, وہ ان کے بچوں پہ چل رہی ہیں, خون کی ندیاں ادھر کھیلی جا رہی ہیں. آج اخوت کا رشتہ کدھر ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا جسم کو درد ہوگا سارے جسم کو ہوگا, بخار ہوگی سب کو ہوگی. یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے میرے ہاتھ میں بخار ہے اور بازو میں نہیں. کہاں درد ہے آج مجھے بوسنیا کا, اور کہاں درد ہے آج مجھے اور آپ کو دنیا میں کٹنے والوں پہ اسلام کے نام پہ؟ ہم شادیاں بھی مناتے, ہم کھاتے. 2-3 ماہ پہلے جنگ کی دھمکیاں تھیں اسی ملک میں, یاد ہوگا آپ سب کو. اللہ نے صرف 4 دن کے لیے مجھے بھیجا اس ملک میں, تو مجھے تو سب روٹین پہ لگا. ہم خام خواہ ڈرتے ہیں باہر بیٹھے, ہائے پاکستان میں جنگ لگنے والی ہے, मुझे कोई चेंज नहीं लगा लोगों में, ना बाज़ारों में शॉपिंग में, और ना खाने में, ना दावतों में, ना पहनने में, ना शादियों की तैयारियों में। हाँ, वो ख़बरें सुन लेते हैं, ज़रा सियालकोट के मुहाज़े कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, और वाघा बॉर्डर महफूज तो है, उसमें भी अपनी चीज़ें ही मूव कर रहे होते हैं, जंग लगी तो ये चीज़ें कहाँ लेके जानी है। अल्लाह को ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह बहुत नाराज़ है आज आपसे मेरे से। एक उम्मत होते हुए हमने उस रिश्ते को तोड़ के रख दिया, और वो कहते हैं ना कि नबी ने जो इतनी तकलीफ़ों से उम्मत से जोड़ी थी, आज हमने उसको तोड़ के रखा, सिर्फ अपनी ज़ात के लिए जीते हैं, मुरब्बे गिनते हैं, बेटों के नाम क्या छोड़ना है, बेटियों को कितने तोले सोना, उसको जाएगा उसको जाएगा, जायदाद नस्ल दर नस्ल हमारी चाहती है, फिर भी दीन के नाम पर नहीं लगती, दीन फिर गरीब है। आज का मुसलमान अमीर है, दीन गरीब है। आज हमारा दीन गरीब है, और आप देख लीजिए कि इस्लाम के नाम पे क्या हो रहा है। आज सिर्फ हमारी जमा, मैं कहती वो बेकार चीज़ें जिसको साल हर साल नहीं पहनते, चोरों डाकुओं के डर से हमने बैंकों में रखा हुआ है, पैसे को पकड़ के हमने अपनी बैंक स्टेटमेंट्स में डाला है, बेकार चीज़ें। मैं नहीं कहती घर की को छेड़े, कुछ ना छेड़े घर का, जो रोज़ इस्तेमाल हो रहा है, पहन रहे, खा रहे हैं, शौक से खाइए, अल्लाह नसीब करे। लेकिन अगले 10 साल बाद बेटी की शादी है, जहेज रखा हुआ है, जेवर रखा है, क्या उस पर ज़कात दूँ? ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला। आपको 10 साल बाद बेटी की शादी याद है तो आपको दीन का काम नहीं याद? अल्लाह उसको 10 नहीं 100 तोले देगा, अल्लाह की कसम, अगर आप अल्लाह के नाम पर करते हैं। फिर सवाल ये भी है कि ज़कात बचाऊँ कि ना? भाई वो तो नसाब है, नहीं वो दो बेटियों को आधा आधा देना है तो फिर ज़कात दो की नीयत कर लूँ? ये सवाल है मुसलमानों के, शर्म आने की बात है। अल्लाह अकबर, क्योंकि ये रुकू पढ़ते हुए मुझे तो हमेशा अपना आप इतना, वो कहते हैं ना, कखों से होला लगता है। कौन अपनी किस नेकी पे मान करे, किया क्या हमने? ये लोग कहते हैं आप कुछ करते हैं, अल्लाह की कसम बंदा रात को शर्मिंदा होके सोता है। ये 2-2.5 घंटे इस एसी वाले माहौल में आके कुरान पढ़ के मैंने कोई तीर मार दिया, या आपने अगर सुन लिया तो आपका तो वाकई बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपके लिए भी ये नई चीज़ है, मेरे लिए ये तो एक अपने मुहासबे की बातें हैं। फिर अगली खूबी देखिए, आयत 146 है, बहुत से नबियों के हम रिकाब होकर बहुत से अल्लाह वाले जिहाद कर चुके हैं, इन्हें भी अल्लाह की राह में तकलीफ़ें पहुँची। रुकिए इधर, सोचिए इधर, अपनी तकलीफ़ें सोचें। हमारी तकलीफ़ें भी यकीन करें इतनी छोटी हैं कि शर्म आ जाती है, ये कोई तकलीफ़ है? उंगली में दर्द है तो हम बीमार हैं, माइग्रेन हो रहा है तो बीमार हैं, पाँव के नाखून में कुछ चुभ गया तो बीमार है। ये बीमारियाँ थी, पट्टियाँ बांधी। याद रखिए, एक जंग थी नबी सल्लम की ज़िंदगी में, एक जंग जिसका नाम पड़ गया पट्टियों वाली जंग। क्यों थी वो? साहबा जो उस जंग में गए थे, चल चल के टांगे फोड़े बन गए, पाँव के ऊपर इतने छाले पड़े, पट्टियाँ बांधी बांधी, ज़ातुर रिका जाके पढ़िएगा उसका नाम। वो पट्टियाँ बांध बांध कर गए, अल्लाह कहते तकलीफ़ें उनको भी पहुँची, लेकिन ना तो उन्होंने हिम्मत हारी, अपने लिए चेकलिस्ट रब सासद बनाए, ना तो हिम्मत हारी, ना सुस्त रहे और ना दबे, ना दबे। ये 3 खूबियाँ अंसारुल्लाह का शुआर है। तो अल्लाह सब्र करने वालों को ही चाहता है, क्यों ना अल्लाह उनके गुन गाए, रदी अल्लाहु अन्हु व रदू अन। साहबा की खूबियों पे ऐसे लगता है जैसे झूम झूम के तारीफें कुरान में आती हैं। तो अल्लाह ने ऐसे लोगों की वजह से इस इस्लाम को इतनी इज्जत दी। ये आज जैसे लिबरल और आज डिप्लोमेटिक और पता नहीं कैसे कैसे मुसलमान होते, बेच के खा चुके होते इस्लाम को, अल्लाह ने अपने नबी के साथ जो सहाबा छोड़े, ये तो हमारे सर का ताज है। एक सहाबी को अपने लिए रोल मॉडल बना लीजिए, इतना कुछ करते और न दबे। आज सब इसमें अपने उज़र लिखें, मेरा क्या उज़र है अपने काम से रुकने का, न करने का, लेट होने का, रिलैक्स होने का, और हम इफ्स एंड बट्स में पड़े रहते, बस थोड़ी देर की बात रह गई है, बस कुछ और, कुछ कुछ और, कुछ और। और देखिए सबसे बड़ी बात कि इतनी नेकियां करके भी कोई मान नहीं, फ़ख्र नहीं, बल्कि वमा कान कौलहुम इल्ला अन क़ालू, वो तो यही कहते रहे कि ऐ परवरदिगार हमारे गुनाहों को बख्श दे, और हमसे हमारे कामों में जो बेजा ज़्यादतियाँ हुई हैं। अल्लाह अकबर, हम कहते हैं वो नेकियां करते थे, वो कहते हैं अल्लाह जो ज्यादती हुई उसे भी माफ़ फरमा दे। मोमिन को काबिलियत पे मान नहीं होता, कबूलियत का फिक्र होता है कि अल्लाह ये दुनिया ही ना देख के सब कुछ तारीफें कर जाए, कुछ हमारे पल्ले आखिरत के दिन भी रखना, और हमें साबित कदमी अता फरमा, हाय कदम ना लुढ़क जाए। याद रखिए, बहुत मुश्किल होता है वो वक्त बंदे के लिए जब थोड़ा सा काम दीन का कर लें और फिर बाकी छोड़ दें। और सबसे बड़ी बात, असल काम तो अभी हमारे हाथों भी कोई नहीं हुआ, और वो क्या, हमें काफिरों की कौम पर मदद दे। याद रखिए, जब तक पूरी दुनिया में मुसलमान गालिब नहीं हो जाते, कुरान नहीं पढ़ लेते, ये कुरान के लफ्ज़ सीने में नहीं चले जाते और बामल नहीं हो जाते और दूसरों तक पहुंचकर इस्लाम का पैगाम नहीं पहुंचाते, हम सब मुसलमानों के लिए हंसना मुस्कुराना भी जायज़ नहीं है। लड्डू पेड़े खाने तो दूर की बात है। इस वक्त सुलग रही है उम्मत, जलते पे अगर आप तेल डालें तो वो और जलता है, लेकिन क्या टस से मत जाओगे। ज़रा एक शॉपिंग मॉल में तो घूमिए आप, जाके ज़रा एक टीवी शो तो देखिए आप, दुनिया में ज़रा जाके हज उम्रे पे गए हुए मुसलमानों का टॉर तो देखिए, एक की जगह 10 लगा के जाते हैं। लेकिन मुसलमानों को आज काफिरों पे मदद क्यों नहीं मिल रही? इसलिए कि आज हमारे अंदर वो खूबियाँ नहीं हैं, वो सिफात नहीं है जो मतलूब होती हैं अल्लाह के दीन के लिए। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं कि उनकी इन दुआओं के बदले में क्या हुआ, अल्लाह ने इन्हें दुनिया का सवाब भी दिया। इतनी दुनिया आ गई सहाबा के पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, रोया करते थे, कहते थे अल्लाह हमें दुनिया में दे रहा है। और वल्लाही जब आप अल्लाह के बनते हैं, अल्लाह आपको इतनी देता है जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, आपके दिल दिमाग में उसका तसव्वुर नहीं आता कि मैं ये चीज़ लूँ, ये मैं खर्चूँ, ये मुझे मिले। अल्लाह आपको उससे ज़्यादा देता है। वही बात है कि दुनिया हकीर हो के आती है। हदीस आपने कई बार सुनी हुई है कि जब एक बंदा दुनिया के पीछे भागता है तो दुनिया उससे और आगे भागती है। एक ख्वाहिश पे दम निकलता है, हज़ारों का एक जोड़ा एक औरत लेती है। आज पाकिस्तान में आप किसी ब्रांड वालों को जाकर चेक कर लीजिए, अच्छे ब्रांड का जोड़ा हज़ारों में है, अब सौ में नहीं है। और जब दीन की बात होती है तो हम कहते हैं चलो वो परस में जो रेजगारी पड़ी है वो चंदे में डाल जाओ, तो फिर दीन भी तो फ़कीर रहेगा ना। और सबसे बड़ी बात देखिए कि दुनिया में तो मिलता है और आखरत के सवाब की खूबी भी अता फरमाई। जब चाहत नहीं रहती फिर दुनिया भी मिलती है और आखरत भी मिलेगी। सहाबा इतना रोया करते थे अल्लाह के नबी के बाद कि अल्लाह कहीं तूने हमें सब कुछ दुनिया में तो नहीं दे देना। और अल्लाह नेक लोगों से मोहब्बत करता है, अल्लाह हमें नेक बना दे। ये दुआ कीजिए, रब्बना अग़फिर लना ज़ुनूबना व इसराफना फ़ी अम्रिना व सब्बित अक़दामना व अंसुरना लिल्क़ौमिल काफ़िरीन। इस दुआ को हिर्से जान बनाइए, 147 में हाईलाइट कर लीजिए, इसको आज के दौर में खूब पढ़िए। और स्पेशली अगर आप अल्लाह के रास्ते में निकले हैं, अल्लाह के दीन के काम कर रहे हैं, तो फिर इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि शैतान तो कहीं ना कहीं से आपकी नेकियों को उछक के ले जाएगा। उसके बाद अगला हिस्सा 149 से 155, गज़वा उहद पर तबसरा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउल्लज़ीना कफ़रू यरुद्दूकुम अला आक़ाबिकुम। इसको पहले से समझ लीजिए कि अगर हम मुसलमान सीधे नहीं होंगे तो गैर मुस्लिम हमारे साथ क्या कुछ कर सकते हैं, वो आपको इस हिस्से में इंशाल्लाह मिल जाएगा। ऐ ईमान वालो, अगर तुम काफिरों की बातें मानोगे तो वो तो तुम्हें तो एड़ियों के बल पलटा देंगे, यानी तुम्हें मुर्तद बना देंगे, फिर तुम ना मुराद हो जाओगे, बल्कि अल्लाह तुम्हारा मौला है और वो बेहतरीन मददगार है। 3 सेकंड इस आयत पे गौर कीजिए, क्या बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का फ़र्द, मैं आज काफिरों की बातें मानती हूँ? रंग ढंग हैं इस्लाम के ख़िलाफ़, शादी ब्याह है इस्लाम के ख़िलाफ़, पैन नोड़ना है इस्लाम के ख़िलाफ़। वहाँ जिन फूड चेन्स को कोई पूछता नहीं है, मैं सच बता रही हूँ, अंदर की बात बता रही हूँ, बाहर के मुल्कों के वो फूड चेन नाम नहीं लेती, किसी की भी लेने की आदत नहीं है, लेकिन आपके इस मुल्क में लोग 500 रुपये का एक बर्गर खाते हैं उस चेन का, सबसे छोटा, और ऊपर भी कुछ होंगे। उन मुल्कों में ये छोटे छोटे नाम हैं, अब मैं नाम ना लूँ तो अच्छा, बेचारे कह लीजिए कि जो घरों से बाहर होते हैं स्टूडेंट्स, टेक अवेज, गाड़ी में से पकड़ा ये फटाफट एक बर्गर एक बोतल दे दीजिए, निकल जाते हैं, कोई पूछता नहीं है उनको, ये सिर्फ मजबूरी खाता है। जैसे आप आज के दिहाड़ीदार होटल नहीं होते कि मज़दूर ने भी दाल रोटी खा ली, ये वो वहाँ ये वो चेन्स हैं, आपके इस मुल्क में आकर वो पहाड़ बन जाते हैं। जिस मुल्क के शहरी अपने बच्चे को 500 रुपये का बर्गर और 1500 रुपये का पिज़्ज़ा खिला सकते हैं, वो गरीब है? नहीं, गरीब नहीं है। अल्लाह ने कह दिया अगर तुम उनके तरीक़ों पे चलोगे, अब इससे मुराद ये भी नहीं कि चेन का बर्गर खाना नहीं चाहिए और अच्छा खाना नहीं खाना चाहिए, माइंडसेट की बात है, जब ब्रांड कॉन्शियस हो जाएंगे ना, तो याद रखिए वो दीन से पलटा देंगे आपको। बल्कि अल्लाह तुम्हारा मौला है, दुआ कीजिए अल्लाह हमें अपनी विलायत से महरूम ना कर दे। हम अन करीब काफिरों के दिलों में रोब डाल देंगे। ये कब होता है? जब सच्चा मोमिन बनेंगे हम। देखिए आज मोमिनों का है, आज मुसलमानों का रोब है काफिरों के दिल पे? नहीं। मतलब एक शेर है जंगल में, गुर्राता भी है तो लोग कांप जाते हैं, और एक शेर है सर्कस का, पैसे देकर लोग टिकट देते हैं, जाते हैं सर्कस का शेर देखा है। फ़र्क किस बात का है? सर्कस का शेर नकली शेर है, सबको पता है शेर की खाल में भूसी है और ऊपर से इशारों पे नाच रहा है। जब मुसलमान असली मुसलमान होता है, जो अल्लाह के हुक्म पे चलता है, लोग डरते हैं। सनुल्की फ़ी कुलूब अल्लज़ीना कफरू रोब, अल्लाह ने ये कह दिया मैं काफिरों के दिलों में मुसलमानों तुम्हारा रोब डाल दूंगा। और जब हम दूसरों के इशारों पे नाचते हैं, ऊपर से इस्लाम अंदर से कुछ और, तो फिर क्या होगा? जो आज हो रहा है उसको हम देख ही रहे हैं। तो फरमाया इस वजह से कि ये अल्लाह के साथ इन चीज़ों को शरीक करते हैं जिसकी कोई दलील अल्लाह ने नहीं उतारी, इनका ठिकाना जहन्नुम है और इन जालिमों की बुरी जगह है। अल्लाह ने तुमसे अपना वादा सच्चा कर दिखाया। ये हैं अल्लाह के वादे। अगर अल्लाह ने कल वालों से सच्चा किया ना, आज भी कर सकता है। और अल्लाह हमें सच्चे कर दे, अल्लाह के वादे हमारे साथ खुद बहुत सच्चे होंगे। जबकि तुम इसके हुक्म से इन्हें काट रहे थे, यहाँ तक कि जब तुमने पस्त हिम्मती इख्तियार की, यहाँ से फिर चेक लिस्ट है, ये नेगेटिव लिस्ट बन रही है, जिसको आप कहते हैं ना उल्टी गिनती। पहले जो लिस्ट बोली थी मुहासवे के नुक्तों के साथ, वो पॉजिटिव्स थे जो हमने आपने अपने अंदर लाने हैं एज अंसारुल्लाह। अब यहाँ सब अंसारुल्लाह के लिए चेक लिस्ट, और हम में से हर एक अंसारुल्लाह जो अल्लाह के दीन की मदद करने का दावेदार है। क्या नहीं करना? पहली बात, जब तुमने पस्त हिम्मती इख्तियार की, डोंट लूज़ द होप। और दूसरी, काम में झगड़ने लगे, फाइट विद ईच अदर। हमने दुश्मनों से क्या लड़ना है? हम तो आपस में लड़ रहे हैं। हमारी दुश्मनों से क्या नहीं बननी? हमारी तो आपस में नहीं बनती। तीसरा, और नाफरमानी की। इसके बाद किसने तुम्हारी चाहत की चीज़ तुम्हें दिखा दी? तुम में से बस दुनिया चाहते थे और बस का इरादा आखरत का था, तो फिर इसने तुम्हें इनसे फेर दिया ताकि तुमको आजमाए, और यकीनन इसने तुम्हारी लग्जिश से दरगुजर फरमा दिया। और ईमान वालों पर अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है। क्या पता चला कि जब साथियों में बेहिम्मती आती है ना, तो बरकत ख़त्म हो जाती है, फतह शिकस्त में ढलती है। और आप ग़ज़वे उहद के कुछ मनाजिर आंखों देखा हाल, जबकि तुम चढ़े चले जा रहे थे और किसी की तरफ तवज्जो तक नहीं करते थे, और अल्लाह के रसूल तुम्हें तुम्हारे पीछे से आवाज़ें दे रहे थे, बस तुम्हें गम पर गम पहुंचा, ताकि तुम फौत शुदा चीज़ पर गमगीन ना हो और ना पहुंचने वाली तकलीफ़ पर उदास हो। अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम आमाल से खबरदार है। फिर इसने इस गम के बाद तुम पर अमल नाजिल किया और तुम पर एक जमात को अमन की नींद आने लगी। हाँ, कुछ वो भी लोग थे कि इन्हें अपनी जानों की पड़ी हुई थी। वो अल्लाह ताला के साथ नाहक जहालत भरी बदगुमानियाँ कर रहे थे और कहते थे कि हमें भी किसी चीज़ का इख्तियार है। कह दीजिए, काम कुल का कुल अल्लाह के इख्तियार में है। ये लोग अपने दिलों के भेद आपको नहीं बताते, कहते हैं कि हमें कुछ भी इख्तियार होता तो यहाँ कत्ल ना किए जाते। यहाँ एक और नेगेटिव थिंग अपने लिए नोट कीजिए, काश नहीं कहना। लव का दरवाज़ा खुलता है तो शैतान आ जाता है। कुछ भी ज़िंदगी में नुकसान हो जाए, नुकसान है, हो गया, नसीब में था, अल्लाह ने आपको उससे बड़े से बचाया। बस हम क्या कहते हैं, हाय सफ़र पे ना ही जाते, हमें पता होता इस बस का हादसा हो जाना है, यहाँ रिश्ता ना ही करते, मुझे पता होता मैं तो कभी ना करती। भाई आपको नहीं पता, तभी तो आप इंसान हैं। ज़िंदगी का एक असूल बनाएं, पीछे मुड़कर मत देखिए, आगे देखिए, बहुत सारी खैर है आपके पास। शुक्रगुजार तो बनिए, इस तकलीफ़ से सबक तो सीखिए, और आप सोने जैसी बातें कर लें, अल्लाह अपना फ़ैसला करके रहता है। तो ज़िंदगी में अगर मगर में पढ़कर दीन के काम को ना छोड़िए। याद रखिए, जो नसीब में नेकी है वो भी छिन गई, तो आगे इससे बड़े थप्पड़ भी पड़ सकते हैं। तो ज़िंदगी का असूल ये है कि जो हो जाए उस पर राज़ी रहिए। ये मुनाफिकों की बातें बयान की गई, गज़वे उहद में तो गए नहीं, और जो गए और बीच में निफाक की बातें करते कराते रहे, ये सब बातें हैं, ये सब तबसरे हैं। जो काम नहीं करते वो बैठ के तबसरे कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला हमें ऐसे बेकार लोगों से बचाए। कहते हैं हमें कुछ भी इख्तियार होता तो हम यहाँ कत्ल न किए जाते। आप कह दीजिए गो तुम अपने घरों में भी होते, फिर भी जिनकी किस्मत में कत्ल होना था वो तो मक्तल की तरफ चल खड़े होते। अल्लाह ताला को तुम्हारे सीनों के अंदर की चीज़ का आजमाना और जो कुछ तुम्हारे दिलों में है इसको पाक करना था, और अल्लाह ताला सीनों के भेद से आगाह है। क्या पता चला कि ये अमली मार के ज़िंदगी के आते हैं ताकि हमारे अंदर का पोल खुल जाए। तुम में से जिन लोगों ने उस दिन पीठ दिखाई जिस दिन दोनों जमातों की मुठभेड़ हुई, ये लोग अपने बास करतूतों के बायस शैतान को फिसलाने पर आ गए, लेकिन यकीन जानो कि अल्लाह ताला ने इन्हें माफ़ कर दिया। अल्लाह ताला बख्शने वाला और तहम्मुल वाला है। दुआ कीजिए अल्लाह हमारी कमी बेशियों को माफ़ करे, दरगुजर करे, इसलिए कि हम अल्लाह की मदद के बग़ैर कभी भी चल नहीं सकते। और जितना याद रखिए कि अपने आप को अल्लाह के सामने मुहासबे के लिए पेश करेंगे उतनी अल्लाह ताला की मदद हमारे पास आएगी।